ओम शांति। अच्छा, आदरणीय गीता दीदी जी हमारे बीच में हैं। अच्छा दीदी हमारे बीच में हैं। पहले बहुत 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 सुंदर पाठ बजाते थे। खास उनकी विशेषता है, हम लोगों को जो उनसे लाभ मिलता है, हम जो सीख रहे हैं ना हर एक आत्मा से, तो उनसे हमारे सीखने का परिचय ये है कि एक तो बहुत सटीक है। सटीक समझते कि तीर जिधर निशाने पे जाना है उधर ही जाना है, लेफ्ट राइट नहीं जाना है। ये जो प्योरिटी ऑफ माइंड है, प्योरिटी ऑफ लक्ष्य है, और ये बहुत सुंदर चीज है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन बहुत बड़ा है और बहुत सारा परिवार है, उसमें अपने आप को, अपने समय को, अपने लक्ष्य को इतने बड़े संगठन में समर्थ व्यर्थ के बीच रहते हुए अपने आप को लक्षित रखना, इस मामले में मैं उनको बहुत सुंदर प्रेरणा के रूप में देखती हूँ। और इसीलिए इनकी क्लासेस में आपको सबसे अच्छी बात मिलेगी कि आप अपने आप से सच्ची मुलाकात कर सकते हैं, और जो भी बात है उस पे अपने आप को जरूर तोल करके देखें कि वास्तव में हम भी जीवन में ऐसा महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। आप बहुत छोटे थे तभी बाबा के ज्ञान में आए और 10th करके समर्पण कर दिया ना दीदी। तो पहले तो दीदियां ऐसी होती थी ना, अभी क्या बाबा मिला है चलो भाई। तो बहुत अच्छा है, जितनी तपस्या अधिक होगी उतना हमारा भाग्य अच्छा है ना, क्योंकि स्टूडेंट का भाग्य है टीचर, और टीचर का भाग्य है अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट, तब उसे अपने दिए हुए पे या अपने कहे शेयरिंग पे नाज होता है। दीदी ने बहुत जगह पे यात्राएं की है और बहुत विशेष अनुभूतियां बाबा से रखी हैं, हम सबको भी और बिजनेस विंग को भी संभालते हैं। हमारी विशेष क्लासेस में, ब्राह्मणों की क्लासेस में अलग अलग टॉपिक्स हैं, पर आज हमने रिक्वेस्ट किया दीदी से कि ये जो टॉपिक है उसमें आप हमको शक्तिशाली क्लास कराएं, है ना, बराबर है? डरेंगे तो नहीं ना शक्तिशाली से, कि थोड़ा कंसेशन चाहिए कि नहीं नहीं कल परसों दो दिन थोड़ा सा दीदी, थोड़ा सा बाबा भी कर दे तो चलता है ना माना सारा पुरुषार्थ मुझे ही करना है, ये जिम्मेवारी से भी थोड़ा हम थके हुए हैं ना, लास्ट में है ना कल्प के, तो लास्ट में थक जाते दीदी, दिल होता है बाबा वहां सोने के महल देगा, इधर एक ईंट दे देता तो क्या बिगड़ता था, एक ईंट आज दे दो बाकी उधर मैंने कम लगाना ना हम इतने पहले से थके हुए दीदी, देखो तरह से जन हम पूरा 2500 पूरा कर गया है, फिर बाबा कहते सबसे ज्यादा मेहनत अभी ही करना है, अभी कैसे होगा बताओ इसलिए आपको बुलाया है ओम शांति। दीदी का स्वागत तो करेंगे एक हाथ की ताली से जी।
ओम शांति। थकान तो व्यर्थ में होती है, सही करने में और जिसमें प्राप्ति है उसमें कभी भी थकान नहीं। बाबा मुरली में अपने बिजनेस का अनुभव भी बताते हैं कि कमाई के हिसाब से आधी रात को भी ग्राहक आते, उसको अटेंड करते थे, है ना, क्योंकि कमाई है ना। और शुक्रिया बाबा का कि कोई मेहनत का पुरुषार्थ ही नहीं दिया, मेहनत तो भक्ति में की, बिगर समझ जो मेहनत हम किए भक्ति में, न लक्ष्य न सच्चा ज्ञान, इसको बाबा कहते हैं धक्के खाना। पर समझ पूर्वक और लक्ष्य पूर्वक जो पुरुषार्थ हम करते हैं उसको धक्के खाना नहीं कहे, है ना। जैसे कोई सोचते हैं कि पहले मंदिर में धक्के खाते थे, अब हम सेंटर में धक्के खाते कई ऐसे बोलते हैं, पर बाबा कहते हैं ना कि धक्का वो और सेंटर अलग है ना, क्योंकि भक्ति में बिगर समझ और कोई लक्ष्य नहीं, और जो मेहनत आप करेंगे तो उसको धक्के खाना ही कहेंगे ना, कि भी व्यर्थ के धक्के खाए, बेसमझी से जो आप मेहनत करेंगे उसको क्या कहेंगे, वो मेहनत लगेगी। पर समझ पूर्वक और लक्ष्य पूर्वक जो मेहनत हम करते हैं वो थकाने वाली मेहनत नहीं होती, वो प्राप्ति कराने वाली मेहनत। और देखने में वर्णन करने में बड़ा लगता है, पर वास्तव में तो एक अवेयरनेस की ही बात है, बस जागृति रखनी है। पुरुषार्थ क्या है? अवेयरनेस है ना, जागृति, कि मुझे ज्ञान स्वरूप बनकर समझ पूर्वक हर चीज करनी और एक कदम उठाना और हजार कदम बाबा आगे बढ़ते, हिम्मत का एक कदम और बाबा की मदद के हजार कदम, क्योंकि ऐसे ही भगवान नहीं दे सकते। ऐसे ही दे फिर तो सबको दे ना, वो तो सबका पिता है, सारे विश्व की आत्माओं का पिता है, फिर तो वो सबको देवे ना। इसलिए वो ऐसे ही नहीं दे सकता है, पर थोड़ा हम करते हैं तो पूरी मदद कर देते। हमारा योग बाबा का सहयोग, ये कर्म क्षेत्र है ना, संसार कर्म क्षेत्र है। यहां करेगा वो पाएगा, ये सिद्धांत है। सोचेगा वो पाएगा ऐसा नहीं है, करेगा वो पाएगा, ये सिद्धांत। और भगवान जब सृष्टि कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो उनको भी तो ये सिद्धांत लागू होगा ना। भगवान भी इस सिद्धांत में रहकर कार्य करते है ना, इसको तोड़कर कार्य करे तो फिर उसको भगवान नहीं कहेंगे ना। आज भी मुरली में था ना, कि ऐसे नहीं, वे हमारे बाबा के पास चाबी है तो हमें तो साक्षात्कार करा दे, नहीं, वो तो सबका बाप है, हम जानते हैं और दुनिया नहीं जानती बस। इसलिए परमात्मा कर्म के सिद्धांत में रहकर कार्य करते, टीचर पेपर फोड़कर विद्यार्थी को पास करा दे उसको पावरफुल टीचर नहीं कहेंगे। पावरफुल टीचर किसको कहेंगे? कि वो विद्यार्थियों को इतना उत्साहित करे और इतना अच्छी रीति पढ़ाए कि विद्यार्थी अपनी मेहनत से फर्स्ट रैंक ले, तो वो टीचर पावरफुल है, शक्तिशाली। और बाबा भी जानते हैं कि जो मैं पुरुषार्थ बता रहा हूं उसमें टाइम लगना है, इसलिए तो इतना लंबा पढ़ाई बाबा ने कराई, इतनी लंबी पढ़ाई, इतनी लंबी पालना, इतना लंबा समय भगवान ने प्यार किया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये कोई सेकंड में बनने की बात नहीं, टाइम लगेगा, है ना। जन्म जन्मांतर के संस्कार, हिसाब किताब, कमजोर आत्मा, दुनिया पतित, अंत का समय, और उसमें आत्मा को फिर नंबर वन पोजीशन पर जाना है तो टाइम तो लगेगा, बाबा भी समझते हैं। इसलिए बाबा कभी भी हमें डांटते थोड़ी, सदा प्यार करते, सदा उमंग उत्साह भरते, और तभी आज हम कुछ बन सके। आज जो थोड़ी भी स्थिति बनी है, जीवन बना है, वो एक लंबे समय के पुरुषार्थ के कारण बना है। तो दो चीज है, किसी को टाइम पीरियड लंबा मिला और अभी जो अंत में आए हैं उनको एकदम रिफाइंड नॉलेज मिला। टाइम कम पर रिफाइन, और एकदम रिफाइन टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, खोज करते 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 आज विज्ञान में भी देखो कितनी चीजें रिफाइन बन गई, कॉम्पैक्ट बन गई, माइक्रो बन गई, चीजें सूक्ष्म पर पावरफुल और मल्टी फैसिलिटीज बन। पहले रेडियो कितना बड़ा होता था पता है ना, पुराने जमाने का रेडियो देखा है ना, इतना बड़ा रेडियो होता, टीवी कितना बड़ा भारी भारी होता था, कंप्यूटर कितना बड़ा भारी भारी। चीजें वो ही हैं, पर वो चीजें रिफाइन होते होते आज एकदम कितनी अच्छी बनके हमार क्वालिटी बन गई। एक छोटे से मोबाइल में कितनी सारी सिस्टम्स, कितनी प्राप्तियां, कितने सारे कारोबार होते। तो ऐसे ही जो शुरू में आए उनको लंबा पीरियड मिला, पर ऑलरेडी ज्ञान खोज की अवस्था में। हम लोग जब ज्ञान में आए 69 में, तो अंडाकार शिव बाबा था, उसका चित्र अंडाकार होता था। उसके बाद फिर बाबा ने स्पष्ट किया कि बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है। तब तक भी ज्ञान स्पष्ट नहीं था, त्रिलोक सृष्टि चक्र के चित्र ही कुछ अलग थे। आप देखो तो ज्ञान बाबा ने धीरे धीरे रिफाइन किया, ब्रह्मा बाबा की स्टेज धीरे धीरे बने, और उस अनुसार बच्चों को धीरे धीरे बातें बताई, क्योंकि एक नई शुरुआत थी। टाइम पीरियड ज्यादा पर क्लैरिटी नहीं थी, रिफाइननेस नहीं। अभी टाइम पीरियड कम है पर रिफाइननेस है ना, इतना क्लियर ज्ञान है और एकदम इजी है। अमेरिका में कहते हैं कि कोई भी चीज ऑपरेट करने में, चलाने में आपको मेहनत लगती है, मीन्स आपको वो चीज चलाना आता नहीं है, वरना कोई भी सिस्टम में वहां मेहनत नहीं है। इतनी रिफाइंड टेक्नोलॉजी यूज की हुई तो हमें मेहनत लगती है, भारी लगता है, मीन्स हमने समझा नहीं है, हमें क्लैरिटी नहीं है, प्रैक्टिकल वो मेथड हमें नहीं आता है, इसलिए मेहनत लगती है, वरना कोई मेहनत ही नहीं। भगवान को पहचान लिया ना, सत्य मिल गया, सत्य स्वयं हमारे आगे स्पष्ट हुआ है, खुद भगवान आकर हर सत्य हमें बता रहा है। दुनिया सारी खोज रही पर हमारे अच्छे कर्म, अच्छा ड्रामा में पार्ट, हमारा सौभाग्य कि हम उस परमात्मा को पहचान सके और हमारे आगे जीवन की हर बात का सत्य उसने खुद रिवील किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है, जो विज्ञान भी नहीं कर सका है, धर्म भी नहीं कर सका। ऐसे ऐसे सत्य बाबा ने हमें बताया। तो सत्य स्वयं हमें मिला है, भक्ति की सारी मेहनत सत्य को खोजने में है कि आखिर भगवान कौन है, कहाँ है, क्या है, ये दुनिया क्या है, हमें क्या करना है, उसी खोज में जीवन बीते इन लोगों के, जन्मों के जन्म बीते। पर हमारे आगे हर सत्य स्पष्ट है, और वो भी बिल्कुल सहज भाषा में। कोई विद्वत्ता वाली भाषा नहीं। आज भक्ति में हर शास्त्र संस्कृत में है, आम जनता समझ ही नहीं पाती। जब समझते नहीं है तो अभ्यास क्या करेंगे और आचरण में क्या लाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने मोनोपोली कर ली कि तुम शास्त्र नहीं पढ़ सकते हो, हम ही तुमको समझाएंगे। इसलिए लोग इनके वश हो गए, बिचारों का कोई उद्धार ही नहीं हुआ। श्लोक है, चौपाई है रामायण की, वेदों की ऋचाएं हैं, कौन समझता है, कोई नहीं समझ पाता। भगवान ने तो बिल्कुल सहज भाषा में सत्य ज्ञान दिए, और ये भी एक निशानी है कि सत्य सदा सरल होता है, अधूरा ज्ञान कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब आपको खुद को क्लैरिटी नहीं है तो आप उलझी हुई बात लोगों को करेंगे ताकि वो भी ना समझे और मुझे विद्वान समझे। समझा? बाबा ने बिल्कुल सरल भाषा में, अनपढ़ गांव के माताएं भी समझती, जो दुनिया के विद्वान नहीं समझते। और सत्य प्राप्त होने के बाद फिर कोई मेहनत नहीं, सिर्फ जीवन में लाना है, धारण करना है। फिर उसे धारण ही करना है, माना भोजन का थाल आ गया, आपको सिर्फ खाना है, हजम करना है, बस उतनी मेहनत तो करना ही होगा ना भाई। भोजन का थाल आ जाए, खाने की मेहनत तो इंसान खुद करेगा कि नहीं करेगा? उसे धारण करना है, बस अभ्यास में लाना है, बाकी कोई मेहनत नहीं। और वो भी हमें पता है कि हमें जो मेहनत लग रही है वो हमारे अपनी आदतों और संस्कारों के कारण लग रही है, बाकी चीज इजी है। बेसिकली बाबा का ज्ञान योग पुरुषार्थ मुश्किल होता तो हम कब से छोड़ देते, हम कब से छोड़ देते। पर हमें पता है कि ओरिजिनली इजी है, तो मेरी अपनी कमजोरियां हैं जिसके कारण मुझे मुश्किल लग रहा है, बाकी मुश्किल है नहीं। पहले भगवान को हम ये प्रार्थना करते थे कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम भटक रहे हैं, हमें सत्य बताओ, हमें राह दिखाओ, हमें ज्ञान का प्रकाश दो। भगवान ने वो किया, वो आया और ज्ञान दिया। अब जब धारण करने की बात आई तो हम मुकर रहे हैं, है कि नहीं ऐसा? तो अपने आप को सिखाना है कि जब सत्य नहीं था तो बार बार जन्म जन्मांतर पुकार पुकार के बुलाते रहते थे। जैसे कोई मेहमान को आप कहो कि आइए आइए हमारे घर आइए, हाँ भाई आओ ना, जरूर आओ ना, और जब आवे तब आप कुछ ध्यान ही ना दो तो उसको क्या कहेंगे? तो हम वो कर रहे हैं ना कि भक्ति में हम ही पुकारते थे, आओ पावन बनाओ, आत्मा को शुद्ध बनाओ, हमें सत्य बताओ, हम भटक रहे हैं, हमें दुख से छुड़ाओ। जब वो आकर सुख का रास्ता बता रहा है तो अब हम पीछे क्यों हो रहे हैं? आध्यात्मिक मार्ग के लिए तो कहते ही है ना कि पहले मस्तक रखो फिर आगे कदम उठाओ। तो ये रियलाइजेशन हो हमें कि स्वयं भगवान सत्य बता रहा है, अब एक गुरु से दूसरा गुरु, एक शास्त्र से दूसरा शास्त्र, एक कथा से दूसरी कथा, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में भटकने की जरूरत नहीं है। वो मेहनत से भगवान तो छुड़ा रहा है। अब तो सिंपल बात है कि भगवान जो कहता है वो हमें करना है, तो उसके लिए तैयार है, तब हम आगे पीछे हो रहे हैं और फिर कहते हैं कि मेहनत लगती। मेहनत तो है ही नहीं। अच्छा, जो धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं, धारण किया नहीं और प्राप्ति है, पुरुषार्थ शुरू किया नहीं और महानता आती, हमारे संकल्पों में, हमारी वाणी में, हमारे कर्म में शक्ति भर जाती। हमारा भाग्य खुल जाता है, क्योंकि जैसे ही आपके मन वचन कर्म ठीक होने लगेंगे अपने आप भाग्य भी ठीक होने लगता है, नसीब भी ठीक होने लगता है, प्राप्ति ही प्राप्ति, सुख ही सुख, महानता ही महानता। इसलिए रोज क्यों बाबा पढ़ाई कराते, उसका कारण ही ये, रोज ज्ञान योग करते हैं, रोज योग में आते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, इसलिए ही तो हम करते हैं ना, ताकि हमारा संकल्प ढीला ना हो जाए, लक्ष्य मजबूत रहे। रोज खुद खुद को याद कराते हैं, बाबा की याद में आप बैठते हैं तो आप क्या करते? हम खुद ही खुद को याद करते कराते हैं ना कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, कैसी हूँ, अब कौन सा समय है, अब क्या बनना है। ऑटो सजेशंस हम खुद खुद को देते हैं कि मैं शांत हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सत्य हूं। और फिर बाबा याद कराते हैं, हम मुरली सुनते हैं, बाबा हमें फिर से अपने लक्ष्य में मजबूत करते हैं। अब आप बताइए, पुरुषार्थ के नाम पर रोज कितना आप करते हैं, क्या करते हैं, उसमें कितनी मेहनत करते हैं? मुझे तो लगता है मुश्किल से हम एक घंटा योग करते होंगे, एक घंटा बाबा की मुरली सुनते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ करते हैं। 24 घंटे में से 2 घंटा, अब इसको आप मुश्किल कहेंगे कि सहज कहेंगे, क्या कहेंगे? व्यर्थ की सारी मेहनत तो बाबा ने छुड़ा दी। पर बाबा कहते हैं ना कि लक्ष्य ढीला हो जाता है, भगवान आप समान बनाता है ना। मनुष्य आधा अधूरा सिखाएगा कि भाई पूरा नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो ये मेरे भी सिर पर चढ़ जाएगा। हा? अपनी खुद होशियारी कुछ रख लेता है ना, पर बाबा तो सब कुछ हमारे आगे बता दिया ना, जो भी ज्ञान के आदि मध्यंत के राज है वो सारे बाबा ने खोल दिए। वो समान बनाना चाहता है, इसलिए अब देखो स्टेप बाय स्टेप कितनी ऊंचाई पर बाबा हमें ले जाते हैं। अब बाबा के साथ साथ पढ़ाई करते रहे तो बाबा के साथ साथ ऊंचाई पर हम चलते रहते। जैसे इस सीजन में मुरलियां तो सुनी ना बाबा की, एक साल से तो ज्ञान में चलने वाले होंगे ना भाई बहनों, उससे ज्यादा ही है ना। पिछली सीजन में जो बाबा ने कहा 8 मुरलियां चली, अब ये बाकी 6 मास होमवर्क के लिए मिले हैं ना, कि 6 मास बाबा ने 8 बार आकर हमें होमवर्क दिया है। अब वो 6 मास अप्रैल से सितंबर वही होमवर्क हमें करना है। बस जो लेटेस्ट सिग्नल्स है बाबा के उसी पर हमें ध्यान देना है। ओवरऑल अगर आप देखें मोटे रूप से तो सीजन में बाबा ने क्या कहा और क्या किया, अधिकतर बाबा ने क्या किया मुरलियों में, प्यार किया, वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह, मीठे बाबा मीठे बच्चे, है ना। बाबा ने सिंपली प्यार किया, हमारा उमंग उत्साह बढ़ाए, हिम्मत भरी, उमंग उत्साह बढ़ा, है ना। इतना प्यार बाबा ने किया। क्योंकि जो पढ़ाना था वो भगवान ने पढ़ा लिया, जो कहना था वो कह दिया, इसलिए आप प्यार करते हैं। बस एनुअल एग्जाम आती है बच्चे की तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं, ध्यान देते हैं, इनकी तबीयत ठीक रहे, ये ठीक से खाएं सोए, ठीक से पढ़े, बस डांट डपकार नहीं करते, जानते हैं उनका अभी माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, केयर करते हैं ना। तो बाबा ने भी क्या किया, प्यार किया, बस हिम्मत भरी, उमंग उत्साह भरा, हमारी केयर की बाबा ने। क्योंकि बाबा जानते हैं अब जो समय आने वाला है वो फाइनल एग्जाम के पेपर आने वाले है। पूरा संगम युग हमने क्या किया उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट अब दिखाना है। भाई कोई मोटर ड्राइविंग स्कूल में जाता है कि कैसे कार चलाएं सीखने जाता है ना, कितने मास का कोर्स होता है, 15 दिन, 1 मास, है ना, 3 मास, चलो उसके बाद कार नहीं सीखेगा तो लोग कहेंगे ना भाई क्या सीखे आप, 3 मास आप तो गए, तो हम एक साल से, दो साल से, दस साल से, बीस साल से, चालीस साल से भगवान हमको पढ़ा रहा है, हम उसका प्यार ले रहे हैं, पालना ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसका लाभ तो ले ही रहे हैं ना, फायदा तो ले ही रहे हैं ना, हमारा जीवन अच्छा बन गया, हम पवित्र बन गए, योगी बन गए, हम व्यर्थ की कितनी चिंताओं से, गलत रस्मों से, अंधश्रद्धाओं से छूट गए, फिकरों से फारिग हो गए। आज जिनको ज्ञान नहीं है उनके जीवन को आप देखो, कदम कदम पर टेंशन है उनको, चिंताएं हैं, इंसान को इच्छाएं ज्यादा हो और परिस्थितियां फेवर में ना हो तो कितना व्यक्ति परेशान और दुखी होता है। हमें तो बाबा ने समझ ऐसी दी, ज्ञान ऐसा दिया, इतनी ऊंची नजर से देखा, इतना प्यार किया, हमारा व्यर्थ खत्म, अज्ञानता खत्म, चिंताएं खत्म, हमारा जीवन तो आसान बन गया ना, हमें तो फायदा ही हुआ ना कि नुकसान हुआ, बरोबर आवाज नहीं आ रहा है, फायदा हुआ ना, सतयुग तो आएगा, अपने टाइम पर आएगा, उसको कोई मिथ्या नहीं कर सकता है, मैं पुरुषार्थ करूं या न करूं, जो होना है वो तो एक्यूरेट होना है और टाइम से होना है, पर मेरे पुरुषार्थ की बात है, अभी भी ज्ञान योग में चलने से, नियम धारणाओं में चलने से हमें तो फायदा ही है ना, हमें तो फायदा ही है, हमारी जीवन तो अच्छी बन गई। पर जब एक पुरुषार्थ का मौका है, जब कोई प्राप्ति का मौका है, तो हमेशा हर बात में इंसान का लक्ष्य क्या रहता है, वे आपको ये कहा जाए कि यहाँ मुफ्त में जिसको जितना चाहिए उतने चावल मिल रहे हैं, तो इंसान क्या करेगा, क्या करेगा, मैक्सिमम लेने की कोशिश करेगा ना। तो हमें भी अब बाबा ने बताया है और हमारा विवेक भी स्वीकार कर रहा है कि पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा में केवल अभी संगम युग में जितना हम महान बनना चाहें हम बन सकते, स्वयं भगवान बना रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, बनना तो मुझे है ना, वो बना रहा है, गाइड कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, फिर ड्रामा में कोई मौका नहीं है, ना भगवान कोई युग में आएगा, ना हम पुरुषार्थ करेंगे, ना वो टाइम कोई चढ़ती कला का होगा, है ना, वो तो सत्ययुग में आप आए उसी क्षण से उतरना शुरू है, जब ये पता है तो हमारा काम क्या होना चाहिए बताओ, फिर हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए, कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए बताइए, फिर तो पूरी मेहनत कर दी है ना, और जितना करते हैं उतना आनंद होता है। जितना आत्मा प्राप्ति करेगी उतना खुशी। और आज इतने साल से ज्ञान में चलते चलते, योग लगाते लगाते, नियम मर्यादाओं में चलते चलते, आज हम महसूस कर रहे हैं क्या वो चीजें नेचुरल होने लगी, तो खुशी होती है कि अब मैं आत्मा अंदर से शुद्ध हूं। अब कोई युद्ध नहीं है, अब कोई मेहनत नहीं। बाबा कहते हैं ना, युद्ध और मेहनत बाबा को अच्छे नहीं लगते। बाबा मुरली में कहते हैं ना कि बच्चे युद्ध करते हैं, मैंने मेहनत लगती है, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को मेहनत करते हुए अच्छा नहीं लगता। पर युद्ध क्यों लगती है, मेहनत क्यों होती है? क्योंकि भगवान जो कहते हैं करने के लिए, जरूर हमारी इच्छा दूसरी है, इसलिए मेहनत लगती। आप जो कहो वो मुझे पसंद हो तो मेहनत की बात ही नहीं है ना। आप जो कहो मुझे स्वीकार है तो मेहनत ही नहीं है ना। पर बाबा जो कहते हैं मैं आत्मा, उससे स्वीकार नहीं कर पा रही, मेरी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, इसलिए मेहनत लगती है, युद्ध लगता है। वरना मेहनत नहीं। जो कुछ हम छोड़ते हैं ज्ञान में आने के बाद, विषय वासना, अवगुण, बुराई, कमजोरियां, अज्ञान, अंधश्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, और उन विकारों बुराइयों के आधार पर जो गलत आदतें विकसित होती हैं, गलत शौक विकसित होते हैं, वो सार वही हम छोड़ते हैं ना। अब वो छोड़ने योग्य है या नहीं है बताइए। घर में गंदगी से, वेस्ट से डस्टबिन भरा है तो उसको आप बाहर खाली करके आएंगे या नहीं आएंगे कि भरा रहे तो खुशी होती? हाँ, गंदगी भरी रहे तो खुशी होगी या डस्टबिन खाली करेंगे तो खुशी होगी? क्योंकि गंदगी रहेगी तो और जम्स फैलेंगे, और बदबू फैलेगी, और बीमारियां आएगी। तो गंदगी है ही फेंकने के लिए, रखने के लिए नहीं है। तो जो हमने छोड़ा बाबा के बनने के बाद, वो तो छोड़ना ही चाहिए ना, वो तो छोड़ने योग्य चीजें है ना, उसको त्याग नहीं कहेंगे। वो त्याग नहीं है, परिवर्तन है, चॉइस है कि आप गंदगी छोड़ते हैं, वो त्याग नहीं, वो हमारे अपनी उन्नति और सुख के लिए। भई हमने सुबह जल्दी हम उठते हैं, है ना? सुबह सुबह जब अच्छी नींद आती है तब बाबा कहते हैं कि उठो। कईयों को यही मुसीबत लगता है, सुबह उठ के रोज ये बाबा पता नहीं कहाँ से आया और सुबह सुबह उठाता है। पर आज हमने मेहनत किया, आज हमारा उठना नेचुरल हो गया, तो हम महसूस करते हैं ना कि सचमुच तन और मन के लिए अच्छा समय सिर्फ अमृत वेला ही है, बाकी सारा दिन तो सारा प्रदूषण ही है, अच्छा है ही नहीं। ये तो अच्छा किया भगवान ने हमें आदत डाल दी। अब समझ में आ रहा है ना कि उसने जो कुछ किया करवाया वो हमारे कल्याण के लिए ही करवाए। बाकी दिन भर तो इतना पॉल्यूशन है और इतने नेगेटिव थॉट्स है। एक भाई ने बताया कि मेरे को मरने का मतलब जब ख्याल आता है तो मेरे को इतना फास्ट 100-500 और विचार आते हैं कि मर जा मर जा मर जा, क्योंकि आज दुनिया के वायुमंडल में कौन से विचार हैं मरने और मारने के। हर कोई क्या सोच रहा है, ये मर जाए तो अच्छा है और ये मर जाए तो अच्छा है। बोलते नहीं है इतना ना बोलते नहीं है, बाकी मन में क्या है, ये जाए तो अच्छा है और वो सोचेंगे कि ये जाए तो अच्छा। कहता है ऐसे होता है, नेगेटिव थॉट को बल देने वाले और 100 विचार आ जाते हैं, हाँ मर जा मर जा, ऐसे मेरे को होता है। क्योंकि वातावरण वो ही है। ये तो सुबह सुबह हम अपने आप को अपने मन बुद्धि को बाबा के ज्ञान योग से पावरफुल बना लेते हैं ना, सेफ कर लेते हैं, तो हमें ये बातें असर नहीं करती। इसलिए बाबा जब दे रहा है तो थकना नहीं चाहिए ना। भक्ति में कहते थे कि भगवान जब देता है तो कैसा देता है और अब छप्पर फाड़ के दे रहा है तो थक रहे हैं कि बस इतना बहुत इतना बहुत बाबा इतना ही पुरुषार्थी के, बाबा पवित्र हैं हम, योगी हैं, सेवा भी करते हैं, बस इतना बहुत है। बाबा तो परफेक्ट बना रहा है ना कि विकार का अंश भी न रहे, जो वंश फिर से बन जाए। इसलिए वो उतनी ऊंचाई तक ले जाता है, हमें तो उतना ही करना है ना कि वो जो कहता है वो करना है बस, अंत तक। अंत तक ये हमें करना है, हमारा काम है ज्ञान योग करना, अंत तक पुरुषार्थ करना। अपने आप हमारी स्थिति बनती जाती है, आत्मा में योग्यताएं आती जाती हैं, शक्तियां आती जाती। जब कोई ज्ञान योग में नहीं चल रहे थे तब हम चले, अब जब सारी दुनिया ज्ञान योग को परख रही है और समझने चाहती है तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें एग्जाम्पल बन के सबके सामने खड़े रहना है कि अब तक कहते थे अब हमें दिखाना है जीवन से। जब अब वो तैयार हुए हैं, आपको अनुभव होता होगा ना, जो लोग पहले ज्ञान नहीं सुनते थे वो अब सुनने लगे, अब दुनिया मानने लगी है कि ये फैशन व्यसन ये सब तन मन को खराब करने वाली चीजें हैं, अति भौतिकता, अति बॉडी कॉन्शियसनेस, दुनिया अब समझ रही है। अब हमारी खुशी और गर्व के दिन आए हैं कि हम जो सालों से कहते थे अब लोग उसे मान रहे हैं, तो हमें उनके आगे सैंपल बनना है, एग्जाम्पल बनना है। बाबा ने कहा ना, ऐसा सच्चा योगी जिसकी दृष्टि से व्यक्ति शांत हो जाए, परसों ही तो कहा बाबा ने। तो ये मौका है हमें एग्जाम्पल बनने, उनके आगे रोल मॉडल बनने का कि देखो जब ये कहते थे हम मानते नहीं थे, सुनते नहीं थे, और आज ये तो बन गए, ये तो बन गए और हम रह गए। इसलिए हमारे ब्राह्मण जीवन की सार्थकता ही लक्ष्य सिद्धि में है। लक्ष्य किस लक्ष्य से ब्राह्मण जीवन हमने शुरू किया था? ब्राह्मण तो बने हैं ना सभी, हाँ, पूरा जन्म लिया है ना ब्राह्मण जन्म, कि अभी दोनों नाव में पांव है, हैं? पक्का जन्म लिया है ना भाई? तो मैं आगे की बात करूं, हाँ? ब्राह्मण हम क्यों बने, ज्ञान योग में हम क्यों आए, क्या लक्ष्य हमारा, हमारी रियलाइजेशन क्या रही? जब ज्ञान मिला तो यही समझ में आया ना कि देखो अब हमें सत्य मिला, अब तक तो भटक रहे, ये समझ में आया ना, तो लक्ष्य बना कि अब मुझे अपना जीवन पवित्र और योगी बनाना है। कोई एक दिन में बन गए बाबा के पक्के बच्चे, इसमें भी बैठे होंगे जो ज्ञान का पहला लेसन लेते ही बाबा के पक्के सच्चे बच्चे बन गए, वो हाथ ऊपर करो, देखो एक दो को है कि नहीं। कोई 3 दिन में बन गए, कोई 7 दिन में बन गए, कोई 1 मास में बन गए। आधा कल्प से भटकने वाली आत्मा, विकारों के मार्ग पर चलने वाली आत्मा, बाबा का ज्ञान मिलते ही जीवन बदल गया, पवित्र योगी बन गए। यही तो सत्य की शक्ति है, यही तो सत्य की शक्ति है ना, कि आत्मा को असर हुई। हमने आधा कल्प का विकारी मार्ग छोड़ पवित्र योगी जीवन का मार्ग अपनाया, क्योंकि यह हर आत्मा को अंदर से ये इच्छा होती, क्योंकि आत्मा ओरिजिनली सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए कितनी भी विकारी पतित आत्मा हो उसको अंदर से जरूर होगा कि अब मुझे सुधरना है, मुझे अपना सुधार उद्धार करना है, ये उनको अंदर होता है। तो हमें भी बाबा का ज्ञान क्यों अच्छा लगा, क्यों हम रोज करने लगे कि मुझे मनुष्य से देवता बनना है, पवित्र योगी बनना है, मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। और हमारे जैसा ही एक सामान्य मनुष्य ब्रह्मा बाप, अगर वो अपने निश्चय और समर्पणता से संपूर्ण बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम भी तो बन सकते। आज आप ज्ञान के हिसाब से बताइए, पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा में सभी आत्माओं में से नंबर वन महातपस्वी आत्मा कौन बनी? ब्रह्मा बाप बना, एक गृहस्थी बना, घरबार छोड़ने वाले नहीं, गृहस्थी बना। इसलिए मन में अगर ये बात है कि हम तो घर में रहते हैं, कितनी बातें हैं, हम कैसे संपूर्ण बन सकते हैं, ये बातें निकाल दीजिए, खत्म कर दीजिए। आत्मा का संपूर्ण बनने का हिसाब कोई परिस्थितियों से नहीं है, लगन से है, समझ से है। मधुबन में बैठ के भी वो ही योगी हो सकता है जिसको खुद योगी बनना है और जिसको लगन है, वरना इतने अच्छे वातावरण में बैठ के भी मैं नहीं बनूंगी। इसलिए घर में रहे, सेंटर में रहे या मधुबन में रहे, वही आत्मा अपनी स्थिति बनाती है, अपने इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन को सार्थक करती है। जिसको समझ आ गई है, परख आ गई है कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ और मुझे क्या करना है, ये समय कौन सा है। दादी जानकी कहती है ना, 3 बार ओम शांति माना, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये अवेयरनेस। बस तो आप एक कोने में रह के भी बन सकते, और अगर ये चीज नहीं है तो सबके सामने स्टेज पर आने के बाद भी नहीं बन सकेंगे। बात खुद की लगन, खुद की अवेयरनेस, खुद का पुरुषार्थ है, बाकी तो भगवान ने सब बता दिया है। टीचर सबको एक सरीखा पढ़ाता है, 50-60-100 जितने विद्यार्थी होते, नंबर वो विद्यार्थी लेता है जो अच्छा होमवर्क करता है। तो बाबा ने
प्यार प्यार में बहुत अच्छा होमवर्क दिया है, इस सीजन में भी दिया है। सीजन की मुरलियां फिर से रिवाइज करना है, एक बार दो बार तीन बार अच्छी रीति पढ़िए, होमवर्क निकालिए। बाबा ने एक बात ये कही है कि सदा आपका चमकता हुआ दिव्य ज्योति स्वरूप ही सबको दिखाई दे। ये साधारण स्वरूप गायब हो जाए, ये होमवर्क मिला है। शरीर दिखाई न दे, आत्मा की लाइट माइट दिखाई दे। तो ये होमवर्क करना है। आप जितना जिस बात के कॉन्शियस रहेंगे वही बात आपकी दिखाई देगी दूसरे को। आप बॉडी कॉन्शियस रहेंगे तो आपकी बॉडी ही दिखाई देंगे। आप जितना अपने असली सत्य शुद्ध ज्योति आत्म स्वरूप की आपको कॉन्शियसनेस रहेगी, दूसरे को वो ही दिखाई देगा। साधारण स्वरूप गायब हो जाए। दूसरे शब्दों में बाबा ने फिर वो बात कही है, रिवाजी चाल ना हो। एक कॉमन चाल आपकी नहीं होनी चाहिए पुरुषार्थ। विशेष साधारणता की नेचर को खत्म करो, ये बाबा ने कहा है। बहुत कम समय हम अपनी ऊंची रूहानी दिव्य स्टेज में रहते हैं, बहुत जल्दी हम नीचे आ जाते हैं, हल्की स्थिति साधारण स्थिति बन जाती है कि नहीं? ऐसा क्लास पूरा हुआ बाहर निकलते हैं तो सेंटर से बाहर गए हम, ब्राह्मण भी आपस में क्या करते हैं और दूसरों के साथ भी हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी साधारण बन जाते। हमें फिर ऊंची स्टेज में स्थित होने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा है कि ऐसा नहीं है पुरुषार्थ नहीं है, लक्ष्य नहीं है, अटेंशन नहीं है। बाबा ने कहा बच्चों का लक्ष्य है, अटेंशन है, पुरुषार्थ है, पर कभी ढीला कभी कैसा, कभी कैसा कभी कैसा। आप समय अनुसार सदा ऊंची स्थिति चाहिए। बाबा ने टाइम सिग्नल भी बताया, फाइनल पेपर अचानक होना है। कोई हमें बता के संगम युग पूरा नहीं होगा, कोई हमसे छुट्टी लेके बाबा का पार्ट पूरा नहीं होगा। फिर तो हर कोई सावधान हो जाए, इसलिए ये ड्रामा में नोंद नहीं है। अब तक बाबा कहते थे जो कुछ होगा अचानक होगा,
अचानक कुछ भी कभी भी होगा, ये बाबा कहते हैं ना। इस बार ये भी बाबा ने कहा फाइनल पेपर अचानक होना है, फाइनल पेपर। तो हमारा रियल इंटरेस्ट हो अपनी ऊंची स्थिति में रहने का, देहभान से न्यारी, रूहानी स्थिति का लक्ष्य हमें अच्छा लगे सदा। और इसलिए बाबा ने इतना संगम के लास्ट इस पीरियड में भी फिर से ध्यान दिलाया कुसंग और अलबेलेपन से मुक्त हो जाओ। इस सीजन में ये कहा है, अब दुनिया के संग से हम न्यारे हैं, उनके उनसे तो हम निकल चुके हैं। यहां परख चाहिए किसका संग करना है और किससे न्यारा रहना है। एक दो के संग में कितना टाइम माइंड एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो या तो कुसंग के कारण अवस्था नहीं बन रही है या तो अलबेले हैं, अलबेले हैं, समझा ही नहीं है कि कौन सा टाइम चल रहा है और कौन कह रहा है, समझा ही नहीं। अगर ये राज समझे हो वो अलबेला हो ही नहीं सकता है। बनता हूं, देखता हूं, करता हूं, ये आएगा ही नहीं उसमें, उसको तो करने में बनने में ही मजा आता है। माया के कोई भी स्वरूप से सेफ रहो, ये भी बाबा ने इस सीजन में कहा। माया के कोई भी स्वरूप, माया किसी के भी द्वारा आती है, जरूरी नहीं अज्ञानियों के द्वारा आए, किसी के भी द्वारा आती है माया, कहीं भी आती है। हम एक दोस्त से भी माया आ सकती, निमित्तात्माओं से भी पेपर आ सकते हैं, मधुबन में भी माया आ सकती है। माया किसी को भी माध्यम बना के आती है, इसलिए बाबा ने कहा माया के हर स्वरूप से सेफ रहो। और कल रात्रि क्लास में मैंने बताया था यहाँ कि सेफ रहने के लिए एक दूसरे से डिटैच रहना जरूरी है। बहुत ज्यादा एक दो में साधारण हो जाने से एक दो का प्रभाव जल्दी पड़ता है। डिटैच रहो, अलौकिक रहो। संपूर्णता की सोच को बदलना नहीं है, ये भी बाबा ने कहा। कई पुरुषार्थ करते 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 कहते हैं ना किनारे पर आके डूब जाते, भाई किनारे पर ही पहुंचे, बस थोड़ी देरी थी और हिम्मत हार गए। इसलिए अब संगम के लास्ट में हम पहुंचे हैं, संपूर्णता के सोच को बदलना नहीं है, लक्ष्य पक्का रखना। संगम युग की सौगात है, अलौकिक बाप दादा से मिलन। बाबा ने कहा ना, ये दिन फिर याद आएंगे। इसलिए जितना ले सकते हैं पूरा दम लगा के, हाँ बाबा कहते हैं ना, 200 नाखूनों का जोर लगा के, हैसो 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 करके ही तो चीज उठ जाती है ना, अपने आप हम पहुंच जाएंगे अपनी संपूर्णता की मंजिल पर, और तब आत्मा को सच्ची खुशी और जीवन सार्थकता की महसूसता होगी। ओम शांति।
ओम शांति। अच्छी लगी? कुछ ताली कुछ एक हाथ, सब एक ही साथ संगठन में एक हाथ दिखाओ तो कितना अच्छा लगा।
थैंक यू।
हाथ तो धीरे धीरे हिल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नहीं, आपकी बात बहुत ठीक है, और हम सब ने बहुत वापस रिवाइज किया ना, हमें क्या क्या मिला है बाबा से और क्या हमको पाना है। ठीक है, अभी आपके ब्रेक का टाइम है, पर मुझे एक बात छोटी सी याद आती है। वो दीदी जब कह रहे थे सत्य की परीक्षा और भक्ति की बात, एक छोटा कस्बा है हमारे यहाँ पे, वो धर्म नगरी कहलाता है, और इंटरनेशनल रूप से लोग आते हैं, मतलब छोटी जगह। जब वहाँ सेंटर स्थापना का कार्य चल रहा था तो वहाँ बहुत महंत और बहुत वेद पाठी इस तरह के सब, और आर्य समाज का भी बहुत। तो वो जो बहनें आई थी, साउथ से आई थी वो स्थापना के लिए, तो वो बहनों को बहुत समस्या थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने सबने मिलकर के कि भाई ब्रह्मा कुमारी आ गई है और छोटा कस्बा रहता है, तो उन्होंने कहा कि दीदी उन लोगों ने एक संगठन किया है, वो कहते हैं आपके बड़ों को जो भी बुलाना है बुला लो, अभी आप फाइनल करोगे, क्योंकि हम आपको यहाँ रहने दें इसके लिए हमको पहले, नहीं तो फिर ये नहीं, जो आप वेद शास्त्र पाठ तो कुछ पढ़ाओगे नहीं, आप तो ये बातें बताते हो। तो फाइनली उसने कहा ठीक है, हम एक ट्राई कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, जो भी आते हैं उनको बुला लो, हम आ जाएंगे। आपका ही ज्ञान सत्य है, कैसे बता, कैसे आप ये सब बातें कहते हो। इतनी छोटी छोटी बहनें ये ज्ञान सुनाएगी, और पुरुषों को बहनें ज्ञान सुनाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे याद है इतनी छोटी सी बात से, इतनी छोटी सी बात से सारी सभा चुप हो गई थी, और आज वहां सेंटर इतने सालों से चलता है, और वही लोग मांस है। और वो बात क्या थी, मेजोरिटी भाई थे, सिर्फ एक आधी माता थी वो पीछे थी, मेजोरिटी भाइयों से भरी हुई क्लास थी जो वहां के लोग थे। उन्होंने ये सब बात पूछी थी, हमने सिर्फ एक बात पूछी उनसे, आप इतनी उम्र के, इतने वेद पाठी, इतनी पूजा अर्चना करने वाले अथॉरिटी लोग हैं, आप हमसे पूछना चाहते हैं ना कि क्या है, तो मैं आपसे एक ही बात पूछती हूँ, एक भी भाई हाथ उठाओ जो बचपन से वेद पाठ कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने मुंह से गाली नहीं बोली हो माँ बहन की। एक भी बंदे ने हाथ नहीं उठाया दीदी। तो मैंने कहा लेकिन हमारे आके पूछो, हजारों आते हैं जिनका मुंह खुला रहता है गालियों में, और बाबा के बनने के बाद ऐसी चुप्पी लगती है जो पता नहीं चलता यही लोग थे कभी, है ना। ऐसे हजारों होंगे, हजारों जो नॉर्मल लाइफ से आते हैं अपने प्रोफेशन में छोटे से तंग होने पर, लेडीज भी भाई भी। तो मैंने कहा जब इतना छोटा परिवर्तन नहीं हो सकता और हमसे हो सकता है, तो फिर मुझे कहना चाहिए कि ये शिक्षा यहाँ आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो सत्य माना परिवर्तन, और इतनी छोटी सी बात तो संसार हमसे पूछेगा। बराबर दीदी ने कहा कि बाबा हमसे अब धारणा चाहते हैं, लोग आएंगे हमारा स्वरूप देखना चाहेंगे, तो प्लीज डू एफर्ट, यही बाबा के प्यार का रिटर्न है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू दीदी।